संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। कल के अंतिम कलश में ये कहा था पंचाग्नि तपया महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं। एक ज्ञान के बिना आत्मा की आराधना नहीं हो सकती। अब उसी बात की पोषक गाथा बोलते हैं 205 पेज नंबर 324 समय सार में और 212 समय सार अनुशीलन में। प्राणे गुणे नहीन यदि चाहते हो मुक्त होना। प्राकृत गाथा में क्या है यदि इच्छसि कम में परिमुखम, यदि कर्म से मुक्त होना चाहते हो तो। अब जब कर्म शब्द आता है तो हमारा ध्यान एकदम ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों की तरफ जाता है और हमारी जो ऐसी धारणा है इन्होंने हमें बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है, एक जाता है तो दूसरा नया आ जाता है। और करुणानि योग में पढ़ाते हैं कि जीरदि समय प्रबद्धम, एक समय प्रबद्ध कर्म खिरता है और एक समय प्रबद्ध बंधता है, उसका नाम ही समय प्रबद्ध है। एक समय में प्रबद्ध माने बंध है अच्छी तरीके से, ये समय प्रबद्ध उसका नाम रख दिया उस नाप का। और फिर भी देव गुण हानि प्रमाण उतना सत्ता में हमेशा बना रहता है और ये दुष्चक्र अनादि काल का अभी तक चल रहा है। लेकिन अब उससे मुक्त होना की बात है कि जो हम आगे पूरा प्रकरण देख रहे हैं और पीछे से भी देखते आ रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म से मुक्त होना है। कर्म माने क्रियाकांड। देखो इसमें जगह जगह कोष्टक में कर्म का अर्थ क्रियाकांड लिखा है और आगे आपका कलश भी यही है कि क्रियाकांड से नाम मिले यह आत्म अभिराम। तो ये क्रियाकांड से मुक्त होना है। जरा उधर से ध्यान हटाओ, फिर कोई ज्ञानावनी कर्म है भगवान ने देखे हमने तो देखे नहीं कि हैं कि नहीं है। सब भगवान के ज्ञान में आए अति सूक्ष्म हैं, न हमें आते दिखते हैं न जाते दिखते हैं, हम कैसे मुक्त हों, कैसे छूटें, कैसे छूटें। तो वो तो ये कहते हैं कि तुमने उन कर्मों से छूटने के लिए जो कर्म माने क्रियाकांड अपना रखा है तुम उससे मुक्त हो। तो हम दुराचारी बन जाए, हमने जो सदाचार जीवन में अपना रखा है भगवान की पूजा भक्ति करते हैं सब छोड़ दें, तुम क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं छोड़ो, सिर्फ इनसे हम ज्ञानावरणादि कर्मों से मुक्त हो जाएंगे ऐसा मानना छोड़ो। क्या कि तो बहुत अच्छी सुविधा है कि करते तो रहें और मानना छोड़ें कि हाँ, तो क्या हम सदाचार को छोड़कर दुराचार में जाने के लिए कहेंगे आपसे? क्या भगवान की पूजा भक्ति छोड़कर और विषय कषाय में जमे हुए जीवों की पूजा भक्ति करने को हम कहेंगे? नहीं, वो बात नहीं है। माने इनमें जो धर्म बुद्धि है हमारी वो छोड़ो। तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका नाम की किताब लिखी है, नाम सुना होगा, क्या नाम है उसका? विनय पत्रिका, माने उनने एक चिट्ठी लिखी, एक क्या अनेक चिट्ठियां लिखी, वो 400 पेज की किताब है, कम से कम 400 चिट्ठियां लिखी राम के नाम। वो पद हैं बढ़िया बढ़िया, भजन हैं बढ़िया अच्छे अच्छे। भगवान विनय पत्रिका माने विनय पूर्वक चिट्ठियां लिखी उनने राम के नाम, और देवी देवताओं के नाम भी लिखी, सीता के नाम भी लिखी, हनुमान जी के नाम भी लिखी, पारसनाथ के नाम भी लिखी। और सबसे एक ही प्रार्थना की है कि मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी श्रद्धा भक्ति राम के अलावा और किसी में नहीं हो, बस एक राम में ही रहे। क्या प्रार्थना की है? उनकी स्तुति लिखी है, लेकिन ये प्रार्थना की कि मेरी भक्ति राम के अलावा और किसी में नहीं रहे, और मेरा रोम रोम राम की भक्ति से भरा रहे और 24 घंटा मेरे को रहे। बहुत बहुत बातें हैं, मैंने उसे भी पूरी पढ़ी है आद्योपांत अच्छी तरीके से। सीता जी को पत्र लिखा, उसमें मालूम क्या लिखा है? आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं, तो जब उनका मूड अच्छा हो है ना, तब तुम ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, और बस मेरी ये एप्लीकेशन लगा देना, मुझे ये कर देना, बस मेरी ये बात राम जी के सामने रख देना। और जितनी महिलाएं अपने पतियों से बात मनवाने के लिए जो भी विधियां अपनाती हैं, वो तुलसीदास जी ने वो सारी विधियां उसमें लिख दी। क्या है कि तुम ऐसे हाथ ताजा मत कर देना, भी गुस्से में हो तुम ठोक दो तो भी और गुस्सा हो जाएंगे और मुझे मेरे से और नाराज हो जाएंगे, पर अब मूड देख कर और किस विधि से कैसे कैसे क्या कहना, ये सब उसमें लिखी हैं बातें। हनुमान जी से कहा तुम तो बहुत भगत हो और तुम्हारे तो हृदय में बसे ही हैं, तो तुम भी मेरी विनय पहुंचाना। मैं ये सब रामायण आपको क्यों सुना रहा हूं कि वो विनय पत्रिका उन्होंने लिखी, और फिर राम से एक बात कही कि राम तुम मेरी कविता ही क्या देखते हो, मेरे इस छंद में बहुत बढ़िया अलंकार हैं, छंद हैं, बढ़िया हैं, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें तुम्हारे गुणों का अनुवाद में किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं और वे और बहुत अच्छा अच्छा लिख सकते हैं और लिख भी रहे होंगे, लेकिन मेरे में और उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है जिस पर तुम ध्यान देना कि क्या अंतर है। कि वो लोग तो ऐसे हैं कि बनी तो कविताई नहीं तर राधा कृष्ण के सुमरन को बहानो है। शीतकालीन कवियों ने खूब श्रृंगार रस का वर्णन किया और नायक नायिका के रूप में राधा और कृष्ण को रख दिया, और किसी ने कुछ कहा तो परे ये भगवान की बात है, भगवान और भगवानी की बात है, उन्हें अपने वो सारा श्रृंगार रस उनके नाम पर करके अपने पवित्र माना, और आखिर एक जगह तो लिख ही दिया कि बनी तो कविता ही नहीं तो राधा कृष्ण के सुमरन को बहानो है। इस बहाने से भगवान का स्मरण कर रहा हूं मैं तो, बस खत्म। मेरी कविता ऐसी नहीं है कि तेरे में क्या विशेषता है, कि ये झूठी नहीं है। इस जवान से और इस लेखनी से तेरे अलावा आज तक किसी की प्रशंसा नहीं निकली। ऐसा काम नहीं है जैसे कि अभिनंदन पत्र छपे छपाए तैयार रखे रहते हैं और जो पंडित आता है बस उसका नाम काट के दूसरे का नाम जोड़ देते हैं और उसे दे देते हैं। उसमें क्या लिखा, उसकी वास्तविक क्वालिटियां वो हैं कि नहीं हैं, हमें ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या बस सांचे में यहां राम लिख दिया, फिर वहां कृष्ण लिख दिया, फिर वहां बस महादेव लिख दिया, फिर महावीर लिख दिया, बस खत्म। बस नाम बदलते हैं और बाकी सारी क्वालिटियां वो एक ही जैसे लिखते रहते हैं ना। उनके आता ना शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, समझो नहीं, महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। फिर महावीरा भोला भाले, भोले वाले हैं, भोले वाले किसे कहते हैं? اس کا میں ارتھ بتانا نہیں چاہتا ہوں، آپ اپنے آپ سمجھ لو. تمہیں کیا بننے بس ہٹا کے بن گئی کبیتا ہماری. تو وہ تلسی داس جی کہتے ہیں کہ میری کبیتا ایسی نہیں ہے، جھوٹھی نہیں ہے. آج تک کسی دوسرے اور راجا اور راجاؤں اور ان کے جو ہیں راج درباروں کے کبھی تھے نا، تو وہ راج درباری کبھیوں کے سمان نہیں ہے میری کبتا. بس میں نے تو ایک نشٹ ہو کر تیری بھکتی کی ہے، یہ جھوٹھی نہیں ہے. اس دشٹی سے تم میری اس بات کو دیکھنا تو تیرے کو میری بات بالکل سویکار ہو جائے گی. میری بنائے پترکا میں نے اپلیکیشن تیرے کو میری ضرور سویکار ہو جائے گی. تو ایسے ہی یہاں پر یہ کہتے ہیں اپن بیت راگ کہ یہ بیت راگتا کے علاوہ اور کسی بھی کرم کانڈ سے کریا کانڈ سے اس کی پراپتی نہیں ہوگی. ہم صرف اتنا سمجھانا چاہتے ہیں، تم سے کچھ چھڑانا نہیں چاہتے ہیں. سدا تار سے دورا تار میں تھوڑی لے جانا چاہتے ہیں. جو کر رہے ہو تو بہت اچھا، اور اس سے بھی زیادہ اچھا کرو تو اور بھی بڑھیا ہے. لیکن شاستر میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہر چیز بھومکا انوسار ہوتی ہے. چوتھے گنستان میں چوتھے گنستان کے یوگ ہوتا ہے، پنچم میں پنچم کے یوگ ہوتا ہے، ساتویں پرتما میں ساتویں پرتما کے یوگ ہوتا ہے. یہ نیم ہے، اس کا ہم الگھن نہیں کر سکتے. یدی الگھن کر سکتے ہیں تو یا تو ہم سروگ کی بانی مانیں اور یا تمہاری مانیں. میں نے یہ پرشن بہت اتیانت نزدیکی لوگوں سے جن کے پرتی ہمارا بہت گہرا لگاؤ، دوستی کہہ لو، پریم تھا، ان سے پوچھا کہ آپ کی ایک بھی پرتما نہیں ہے، سمیا درشن ہے کہ نہیں ہے، اس کا آپ خود ہی اس میں کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں. اور بہت تو بڑے گورو کے ساتھ کہتے بھائی ہمیں نہیں، ہمیں 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 نہیں. سمیا درشن نہیں ہونا یہ بہت بڑی ان کی کوالٹی ہو. کچھ ہونے کا کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہونے کا کرتے ہیں. ارے بھائی اس میں کیا ہے، سمجھ اتنی گندی چیز ہے کہ تمہیں ہو جائے گی تو گڑبڑ ہو جائے گی. اور ہونے کی، ہونے میں ہونے والے دھندا کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہونے والے نہ ہونے کیا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ چپ نہیں رہ سکتے ہیں، پرتن کرو جو ہے سو ہے. میں نے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کریا کانڈ پال رہے ہیں، جو بھی سمجھ لو، وہ آپ کے اس بھومکا کے یوگ ہے. کیا مطلب کہ آپ کہتے ہیں ہم نے پریگرہ تیاگ دیا، گھر بار چھوڑ دیا. تو گھر بار تو گیارہویں پرتما میں چھوٹتا ہے، دسویں پرتما تک گھر میں رہنے کا ادھیکار ہے. جین درشن میں ادھیکار نہیں، کرتبیہ بھی ہے. تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا گھر؟ سماج پہ اپنا بوجھا پورا کیوں ڈال دیا؟ یہ جنوانی کے انوسار ہے. میں پورا گنا رہا ہوں اوپر سے. آرمبھ تیاگ اور پریگرہ تیاگ میں انتر جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو کھانا بنانا، کمانا، یہ کرنا، یہ سب کرنا نا کریا ہے، اسے بولتے ہیں آرمبھ. اور پریگرہ تو روپیہ پیسہ دھن سمپتی سب ہوتی ہے. تو پہلے وہ کمائی بند کرتا ہے، جو ہے پریگرہ اس سے اپنے جیون کو ویوستھت کرتا ہے. پھر جب وہ آرمبھ تیاگ کرتا ہے، مانے پھر وہ چولہا چکی نہیں چلائے گا، تب پھر اپنے گھر والے ہی اس کو بھوجن کو بلائیں تو ان کے یہاں بھوجن کر لیتا ہے. خود نے تو آرمبھ کا تیاگ کر دیا، اور وہ ایسا منیراج جیسا ایسا نکل کے نکل نہیں سکتا. وہ نمنترن سے جاتے ہیں، مانے وہ پڑگانے سے نہیں جاتے ہیں، کوئی نمنترن کرے تو ہی جاتے ہیں. تو وہ اپنے گھر میں ہی کہہ دے، کوئی نمنترن کرے یا اپنے گھر والے ہی بلائیں تو کھانا کھا لیتا ہے. پھر وہ پریگرہ جو اپنے مریادہ رکھی تھی نا پرمان برت میں، پھر اس کو بھی تیاگ کرتا ہے. फिर भी घर में रहता है कहता अनुमति देता है, अनुमति माने सलाह मशवरा। घर वाले कोई धंधे व्यापार संबंधी, कोई घर में शादी विवाह संबंधी, कोई संबंधी सलाह मशवरा करना चाहे तो वो उपलब्ध रहता है। तो घर में रहता तब तो उपलब्ध रहेगा, जब वो क्षुल्लक होता है तो उसे घर छोड़ करके और फिर वो पढ़गा करके जाने की परंपरा उसमें अपने यहां अभी तक है। तो इसके नीचे यदि कोई ये क्रियाएं करने लगता है, न सम्मत दर्शन का ठिकाना है, न कोई अभी पहली प्रतिमा है, न दूसरी प्रतिमा है, कुछ नहीं है, और उसके पहले आरंभ त्यागनाथ भी है ना, फिर पहले आती ब्रह्मचरी, तो ब्रह्मचरी भी सातवीं प्रतिमा में होता है, उसके पहले ब्रह्मचर्याणुवृत होता है। अब वो तो कहते नहीं हम तो हैं, अब तुम्हारी माने के भगवान की, भगवान कहते होते ही नहीं हो तुम कहते हो क्या। पंडित बंशीधर जी नया अलंकार थे, वो बराबर उन्होंने ब्रह्मचरी प्रतिमा ली थी और ऊपर सब बात किया था, और उसके बाद में भी कुर्ता धोती और टोपी में रहते थे। अब यहां तो ना कोई पहली प्रतिमा है ना कुछ नहीं है, और बस चद्रा ओढ़ा और चल दिए, बस हम तो त्यागी हैं। तो गुरुदेव तो हरे परमात्मा से काहे के त्यागी हैं, धर्म के त्यागी हैं है? कौन सा पद है जैन दर्शन में? भाई मैं ये नहीं कहूंगा आप ब्रह्मचर्य से रहने का निषेध कर रहे हैं, मैं क्यों निषेध करूंगा? ब्रह्मचर्य तो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहते थे क्यों, बहुत लोग रहते थे, आपको भी रहना चाहिए, ऐसी कौन बात है, कोई जबरदस्ती विषय सेवन करने के लिए आपको कह रहा है ना। लेकिन जैन दर्शन में आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य सातवीं प्रतिमा के बिना नहीं होता, उसके पहले ब्रह्मचर्याणुवृत होता है। अब मैंने सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं की सबकी बात बताई ना, फिर छठवीं प्रतिमा क्या है? रात्रि भोजन त्याग और दिवा मैथुन त्याग। क्या मतलब है? मैंने अभी तक किसी न किसी रूप में रात्रि भोजन चलता था और किसी न किसी रूप में दिवा मैथुन चलता था, इसका ये प्रतिमा इतनी ऊपर क्यों रखी? ये तो बहुत साधारण बातें हैं, जैनी मात्र को भी रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके बहुत स्तर भेद हैं। यदि बिल्कुल चारों तरह के आहार का मन वचन काय से त्याग, बिना किसी प्रतिमा के, बिना किसी व्रत के, बिना किसी सम्मत दर्शन के यहां हो जाता होता तो वे उसे छठवीं प्रतिमा में क्यों रखते? सातवीं ब्रह्मचर्य है और छठवीं में रात्रि भोजन त्याग है, दिवा मैथुन त्याग। पांचवी प्रतिमा का नाम है सचित्र त्याग। यदि पहले ही सब सचित्र का हो जाता त्याग तो वे वहां सचित्र त्याग पांचवी प्रतिमा में क्यों रखते? और पुरुष दो बास ये चौथी प्रतिमा, क्या समझे? चौथी प्रतिमा पुरुष दो बास माने अष्टमी का उपवास, सप्तमी का एकासन और नौमी का एकासन, 48 घंटे का होता है ना, उसे बोलते हैं पुरुष दो बास। तो वो तो उन्होंने चौथी प्रतिमा में रखा, क्यों? अब वो कुछ मछू नहीं है और हमें ठोके जा रहे हैं, हमने 10 दिन का कर दिया, 15 दिन का कर दिया, काचा इतना कर दो ना, क्या होगा उससे, है ना? पुरुष दो उन्होंने वहां रखी, फिर सामायिक, इसके पहले सब ध्यान करने बैठे। अरे अपने सामायिक प्रतिमा तीसरी है और दूसरी प्रतिमा में सामायिक व्रत है, 12 व्रतों में सामायिक नाम का व्रत है ना, उसके पहले कहीं बताओ हो तो हो, या ये नहीं कहता कि आप मैं सामायिक नहीं करूं, आप मतलब होता ही नहीं है, तुम करो जो करते हो वो तुम्हारी सामायिक नहीं है, है? मैं क्या कहना चाहता हूं, ये क्रिया कांड से नाम ले आता हूं, अभी तो बता रहा हूं। वो कहते हैं कि देखो कम्य परिमोक्षम, यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो कर्म को छोड़ो। कर्म माने क्या? अब जिनसे मुक्त होना चाहते हैं वे तो है ज्ञान वर्णादि कर्म, और जिसे छोड़ने की बात कह रहे हैं वो है क्रियाकांड वाला कर्म। अब कर्म शब्द का विवेक से उपयोग करना पड़ेगा। अब एक और तीसरा कर्म होता है वो कर्ता कर्म वाला कर्म, ہوتا ہے نا بھاشا میں کرم ہوتا ہے. تو اب جس جب چھوڑنے کی بات کہتے ہیں تو کریا کانڈ میں دھرم ماننا چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں, اور جب مکت ہونے کی بات کہتے ہیں تو وگیانا برنادی آٹھ کرموں سے موہ راگ دیش روپ بھاو کرموں سے مکت ہونے کے لیے کہتے ہیں, نو کرموں سے مکت ہونے کے لیے نہیں کہتے ہیں. شریر چھوڑ دو یہ کب کہتے ہیں, آتم ہتیا کر لو کہتے ہیں. بھائی پریگرہ بھلے ہی چھوٹتا ہے وہ بھی نو کرم ہے, تو ان کی بھی سب مریادائیں ہیں جو میں نے آپ کو ابھی تک بتائی کہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کیا چھوڑتا ہے. اب جب وہ نہیں ہے تو پھر چھوٹے بڑے کا ویوہار کیوں ہوتا ہے نا. برہمچاری لابھانند جی, لابھانند جی بس اپنے گھومتے رہتے تھے خوب, کچھ نہیں, نہ سمجھنے کا سوال نہیں, کوئی پرت کا سوال نہیں, کوئی پرت ایسی کوئی نہیں جو چیز وہ انہیں چھوڑ رکھی ہو. کیوں سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں, اور آ کے پنڈت جی آپ کی ڈیوٹی ہے ہماری ویوستھا کرو. کیوں کیوں ہماری کیا ڈیوٹی ہے, ہم تیاگی لوگ ہیں, آپ گرست لوگ ہو, اس لیے آپ کی ڈیوٹی ہے ہماری. کون سے تم تیاگی ہو, کائے کے تیاگی ہو, کائے کے تیاگی ہو تم. ارے بھائی ہم پڑھیں پڑھائیں, گھر کی ساری ویوستھا سنبھالیں, پھر شاستر لکھیں, کیوں, اور تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے, بس اکیلے بیٹھے, اور وہ بھی ساری ویوستھا ہم تمہاری کریں کہ تم ہماری کرو. کیوں بولو, سادھر میں برہمچاری جی راج مل جی پنڈت ٹورنا مل جی کی کرتے تھے کہ ٹورنا مل جی برہمچاری جی راج مل جی کی کرتے تھے, بے برتی تھے معلوم, بدھی پوروا کے خیال سے, اور جے برتی نہیں تھے ٹورنا مل جی, جو گرست تھے بال بچوں والے تھے منی بھی کرتے تھے. کیوں, اور وہ راج مل جی ان کی معلوم کیسی سیوا کرتے تھے, ساری ویوستھائیں تو جٹاتے ہی تھے, لیکن پین کاغذ یہ سب لالا کے ان کے سامنے رکھتے تھے, اب ایک عمر سار کی ٹیکا لکھتے تھے تو جب پیج پورا ہو جاتا تھا تو ان کے ہاتھ سے پیج لے لیتے تھے اور دوسرا کوڑا کاغذ رکھ دیتے تھے اور اسے پڑھتے تھے. ایسا لکھا ہے ان نے, بے لکھتے گئے اور ہم بانٹتے گئے. وہ پیج لکھا گیا تو پوری لکھی جائے گی تب ہم پڑھ لیں گے, اتنا دھیرے نہیں تھا. میں نے کس بات کی کریں, میں نے کہا دیکھو ہمارے چار بچے ہیں, دو تم پالو دو ہم پالیں گے, کرو کچھ کچھ کام کرو, ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تھوڑا تم پڑھاؤ, تھوڑی ویوستھا دیکھو ہے نا. جب کچھ ہے ہی نہیں, جب نہ تمہارے گنستان کے حساب سے نہ پرتما کے حساب سے نہ کسی حساب سے, جب کچھ ہے ہی نہیں تو کائے کے تم تیاگی ہو, کائے کے ہم کیسے تمہاری سیوا کریں, اپنے ماں باپ کی سیوا کرنا چھوڑ کے, تین لوگ کے ناتھ کی سیوا کرنا چھوڑ کے, تم کون ہوتے ہو, ہمارے کیا لینا دینا تم سے. پہلی ہماری ڈیوٹی دیو ساس گرو کی ہے, پھر دوسری ہماری ڈیوٹی اپنے ماں باپ کی, اپنے گرو کی, ادھیاپک کی, ان کی ہے, اور پھر تیسرے نمبر پر تم کہیں آتے ہو سادھر بھی ہو نا, مس قدم ہم دونوں ایک دھرم کو مانتے ہیں, سمجھ لو اتنی سی تو بات ہے نا. روپئے تو لاکھوں ہیں کروڑوں میں ہیں, ان کی جتنی سمبھو ہوگی ہوگی, نہیں ہوگی نہیں ہوگی, لیکن نہیں ابھی ساری سماج نے بھی یہ مان رکھا ہے, ان نے بھی یہ مان رکھا ہے, اور اس سے مکتے ہمارے ہم مکت سماج والے بھی نہیں ہیں, لیکن گمبھیرتا سے ہم وچار تو کر سکتے ہیں نا. اس لیے میں نے جان جان کر کہ کرم شبد کا جو ہے نا وہ کریا کانڈ ارتھ کیا کوشٹک میں بار بار, اور یہ کلش رکھ نا اس میں بھی کیا لکھا, پد میدم ننو کرم دورا سدم, وہاں کرم شبد کا پریوگ ہے نا, اور میں نے پدیانواد میں کریا کانڈ سے نہ ملے ایسا لکھا, شبھ کرم سے ان کا مطلب, ان کا ارتھ بھی گیانا ورنادی کرم سے نہیں ہے, سادھن کے روپ میں جب بات کرتے ہیں تو شبھ کرم اشبھ کرم کے روپ میں کرتے ہیں نا, گانا بہنا آدھی کرم کے روپ میں تھوڑی بات کرتے ہیں. تو ہمیں مکت ہونا چاہتے, کیسے مکت ہونا چاہتے, यदि ज्ञानावरण आदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करो, कर्म मत करो ज्ञान कर्म, विज्ञान भी एक कर्म माने कार्य है ना, वो भी एक करने की चीज है, लेकिन इस जगत ने उसको करना ही नहीं माना। ज्ञान गुणे न विहीनाम, कहते ज्ञान गुण से जो रहित हैं, ये जो पदम विहुना लहंते, वे उस परम पद को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान गुण से के बिना हैं और कोई क्रिया कांड करके मुक्त होना चाहते हैं, है ना। तुम गिन्ना नियत मेदम यदि इच्छसि, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो वो जो एक ज्ञान पद है उस ज्ञान पद को तुम ग्रहण करो। अब ये ज्ञान पद में भी जैसे कर्म में ये चक्कर है ना, ज्ञानावरणादि कर्म और क्रियाकांड वाला कर्म, ऐसे ज्ञान में भी है। एक ज्ञान माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ज्ञान माने आत्मा की अनुभूति, माने ज्ञान की पर्याय, आत्मसन्मुख ज्ञान की पर्याय। अब ज्ञान गुणेन विहीना यहां पर क्या लेना है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव से विहीन तो कोई है ही नहीं, है ना। त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा ज्ञान है उससे विहीन तो कौन है, लेकिन उसको अनुभव करने वाली जो पर्याय है सम्यक ज्ञान रूप, उससे रहित मान आत्मानुभूति के बिना। इसलिए देखो नीचे जो गाथा का अर्थ लिखा ना, तो लिखा ज्ञान गुण माने आत्मानुभव। ये ऐसा अपनी तरफ से नहीं लिख दिया, इसे आगे पीछे से सब देखकर और देखा कि खुद आचार्य अमृतचंद ने जयसेन ने इस ज्ञान गुण का अर्थ आत्मानुभूति किया है। क्या वो तो कोष्टक में आपको इसलिए लिख दिया, आगे तो अपने आप आ ही जाएगा आपका ध्यान रहेगा तो, लेकिन आपको यहीं से रहे कि वो ज्ञान गुण के बिना, माने वो ज्ञान गुण है ना आत्मा में, एक दिव्य गुण और पर्याय वाला नहीं है। हम कहते आत्मानुभव से रहित बहुत से लोग अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हुए भी, है ना, उस ज्ञान स्वरूप पद को, अब ये यहां त्रिकाली ध्रुव आ गया ज्ञान है आत्मा को, तो वहां ज्ञान गुण और यहां ज्ञान स्वरूप पद का अर्थ आत्मा किया, वहां अनुभव किया है ना, प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे भव्य जीवो, यदि तुम कर्म से पूर्ण मुक्ति चाहते हो तो इस नियत ज्ञान को ग्रहण करो। कौन वो अपने में नियत, अपना भगवान आत्मा में लगा हुआ जो आत्मानुभव, मैंने आत्मानुभव करो। वो एक राजवार्तिक में आता ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, और वहां पर नीचे एक श्लोक दिया है, और अंधश्च पंगुश्च, ऐसा अंधे और पंगु, अंधा का और लंगड़े, इन दोनों का उदाहरण दिया है कि अंधे और पंगु दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, यदि दोनों मिल जाएं तो वे अपनी आजीविका चला सकते हैं, ख्याल में है ना। वहां एक सब लोग देखो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, क्यों तो वो ये कहते हैं कि अंधे और पंगु का उदाहरण, ये तो दो आदमी हैं, तो ठीक है पंडित के पास ज्ञान और साधु के पास क्रिया, हो गया काम। वहां भी दो है ना, एक अंधा और एक लंगड़ा, तो लंगड़े के पास टांगे नहीं है आंखें हैं, और अंधे के पास टांगे हैं आंखें नहीं है, तो दो ही मिल गए ना, तो यहां भी मिल गए ना, तो दोनों मिलके धर्म हो जाएगा क्या, एक ज्ञान वाला एक क्रियाकांड, एक चारित्र वाला, और उससे धर्म हो जाएगा, क्यों होगी पूर्ति। तो आचार्य कहते भैया जी दोनों एक जगह चाहिए, एक व्यक्ति में होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा कि तुम्हारा ज्ञान और हमारा चारित्र। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है जो बहुत ही कुरूप था, क्या था नाम उसका, अष्टावक्र हिंदुस्तान का नहीं, विदेशी है, विदेशी है, वो कह रहा है तुम समझ लेना क्या लेना देना उससे, लेकिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक जो जिसने वो शिव गिरता देख करके जमीन पर वो इसका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन तो दूसरा होगा, लेकिन न्यूटन तो नहीं है फिर। लेकिन एक जो विद्वान था वो बहुत ही कुरूप था और बहुत ही विद्वान था। एक महिला उसके पास आई और उस महिला ने उससे कहा, बिल्कुल वो तो बुढ़ा था, ये नई उम्र की थी, एकदम बहुत खूबसूरत थी, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तो नहीं क्यों, मैं तो कुरूप आदमी बुढ़ा आदमी, मेरे से तुम शादी क्यों करना चाहती हो, तुम सुंदर हो, अच्छी जवान हो, अच्छा अपने जोड़ीदार देखो कोई। कि नहीं, मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूं कि मैं चाहती हूं कि हमारे जो बच्चा हो वो तुम जैसा बुद्धिमान और मेरे जैसा सुंदर हो। क्या है, मैं ऐसा बच्चा चाहती हूं कि जो मेरे जैसा सुंदर हो और तुम्हारे जैसा बुद्धिमान हो। तो उसने कहा ये तो ठीक है, लेकिन एक बात नहीं सोची तुमने कि यदि भाग्य से मेरे जैसा रूप रंग और तुम्हारे जैसी बुद्धि उसमें आ गई तो क्या होगा। समझे, मेरा रूप रंग और तुम्हारी बुद्धि आ गई तो वो दुनिया का तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ आदमी चाहती हो ना, वो सबसे नीचा हो जाएगा। ये दोष नहीं है, उसी में ज्ञान और उसी में क्रिया। तो ये तो हम कहते हैं कि तुम सोनगढ़ वाले में ज्ञान तो है ही और तुम क्रिया अपना लो, पर हम लोगों में क्रिया तो है ही और हम थोड़ा सा हम भी पढ़ लें समय से। अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो गुरुदेव फरमाते उसमें, ज्ञान माने आत्मा को जानना माने आत्मानुभूति, और क्रिया माने उसी आत्मा में जमे रहना। ज्ञान है ज्ञान और क्रिया माने ध्यान माने है क्रिया है? इसलिए अपने उन लोगों ज्ञानी ध्यानी कहते हैं ना, अपन ने नहीं देवसास गुरु की स्थिति में पूजा में लिखी कि नहीं, ज्ञानी ध्यानी समरसानी द्वादश विद तब नृत्य करते, जो है ना ज्ञानी और ध्यानी, आत्मज्ञानी और आत्मा में लीन रहने वाले ध्यानी, चाहे उसे क्रियाकांड कहो। लेकिन आत्मा की क्रिया तो ये है ना, लेकिन इसे छोड़कर जितनी भी क्रियाएं हैं, देखो सुनना, जो अजैनियों में होती हैं बे, और जैनियों में होती हैं भावलिंगी संतों के बे भी, वे क्रियाएं, वे दोनों ही वो कहते हैं क्रियाकांड हैं। कहां लिखा ना, पिछली कलश में गया ना, कहा ना, जैनी और अजैनी दोनों की। तो वे क्रियाएं होना के नहीं होना, जब होना नहीं होना तेरे हाथ में है क्या, वो तो होती ही हैं। भावलिंगी संतों के तो नग्न दिगंबर तो होंगे ही, पंच महावीर तो उनके जीवन में होंगे ही, जब वे चलेंगे तो इरिया समझ पूर्वक चलेंगे ही। क्या मेरा पालन क्या करें, ये तो पलते हैं। उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता, अब भी आज उसमें झगड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या पालना और पलना इन दोनों में बहुत अंतर है, कैसे हो रही है ना। आत्मख्याति टीका पढ़ते हैं, मेरे आंखों में कुछ ऐसा आ गया कि मुझे दिखता नहीं है, कुछ कम दिखता है। समस्त कर्मों में, कर्मों माने क्रियाकांडों में, प्रकाशन का अभाव होने से, कर्मों माने क्रियाकांडों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कहते उन्हें एक प्रकाशन नाम का गुण नहीं है, प्रकाशन माने जानना। जैसे कि हमें उजेला करना है तो हम उस दीपक को लाएंगे जिसमें प्रकाशन नाम का गुण होगा, तब तो उजेला होगा। अब जिसमें प्रकाशन नाम का गुण ही नहीं है तो ये सारे क्रियाकांड में प्रकाशन नाम का गुण नहीं है, प्रकाशन माने जानना नाम का गुण नहीं है, किंतु आत्मानुभव से ही ज्ञान का प्रकाशन होता है। तो हमारा आत्मानुभवन ये हमारी क्रिया है, क्या नाम, इसलिए मात्र ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बबूल बोगे तो बबूल हो गएगा, आम बोगे तो आम हो गएगा। इस कारण बहुत से ज्ञान शून्य जीव अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी, अब यहां कर्म करने पर भी कोई क्रियाकांड ही आएगा ना, करने पर भी इस ज्ञान पद माने आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाने से वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। अब यहां पर कर्मों में क्रियाकांड नहीं लिखा, क्योंकि वो तो सब समझते हैं ज्ञान अवैनादि कर्मों की बात है। अब ऐसा कहते हैं, यदि तुम कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो कर्मों से मुक्त हो मतलब क्या समझे, वो ज्ञानावरण आदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो क्रियाकांड वाले कर्म से मुक्त हो। अब इसमें इस लोगों को ये लगता है कि हमसे ये सब छुड़वा रहे हैं जो हम करते हैं। मैंने बार बार कह दिया कि छुड़वाने की तो बात ही नहीं है, जीवन में सदाचारी तो होना ही चाहिए, लेकिन उस सदाचार जिसे तुम धर्म मान के बैठे हो उससे मुक्ति के मार्ग में एक कदम भी नहीं चले। माने जो अज्ञानियों के अनुवृत महावृत हैं, जो अज्ञानियों का जो सदाचार है वो तो नहीं है मुक्ति का कारण, लेकिन ज्ञानियों का सदाचार तो है क्या नहीं है, ये समस्या है, समझ गए ना। जो भावलिंगी संत हैं उनका नग्नपना क्या, वो तो मुक्ति का कारण है क्या नहीं है। तो इसी समय सार में आगे वो आएगा, तीन चार गाथाएं लिंग वाली, उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि लिंग मुक्ति का कारण नहीं है। और लिंग पावर तो पूरा लिखा कुंद कुंदन है कि किन का लिंग, कि द्रव्यलिंगी का लिंग नहीं होगा, द्रव्यलिंगी, अरे द्रव्यलिंगी और भावलिंगी क्या है वास्तव में, उसको हम अपने स्वरूप समझते ही नहीं है। पहले मैंने यहां पर चार पांच व्याख्यान किए थे द्रव्यलिंग और भावलिंग पर, लोगों को बहुत डर लगता है कि वो द्रव्यलिंग और भावलिंग के व्याख्यान ख्याल में है ना, कि जब समाज में जाएंगे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहां आए थे ना महाराज, तो उन्होंने को कैसे देने की बात आई तो बुद्धिपूर्वक कहा गया कि जिनमें वो हों वो नहीं देना, पूरी सावधानी बरती गई ऊपर से नीचे तक। लेकिन उनके पास जो सीढ़ी पहुंची उनमें वे व्याख्यान थे, अपने हाथ में क्या है ऊपर से नीचे तक ऑर्डर, जी नहीं 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 नहीं, वो नहीं होना, यहां नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, फिर गए तो नहीं वो, कहा नहीं गए, उसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब हम जब उनके पास पहुंचे तो उनने जाते ही बोला कि आपने सीढ़ी भिजवाई थी बहुत अच्छी है, और मैंने सबसे पहले द्रव्यलिंग भावलिंग के व्याख्यान, द्रव्यलिंग भावलिंग के व्याख्यान सुने पर उनको उसमें ही रास्ता सुनना रहेगा और उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं ये बात। कि बहुत बढ़िया है, हम जिस तरह द्रव्यलिंग शब्द सुनते ही हमारे एकदम जैसे लगते कानों में वो डाल दिया हो गरम गरम लोहा लगा करके, ऐसा नहीं है। सिद्ध तत्व विधान में लिखा है द्रव्यलिंग बिन कर्म खिपाई और भावलिंग बिन शिव पद जाई, यो अयोग कारज नहीं होई, तुम्हें गुण कथन कठिन है सोई। कि जिस प्रकार द्रव्यलिंग के बिना किसी को मोक्ष नहीं होगा और भावलिंग के बिना कर्मों का नाश नहीं होगा, उसी प्रकार जिस प्रकार ये असंभव काम है, द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष जाना असंभव है, भावलिंग के बिना कर्मों का नाश होना असंभव है, उसी प्रकार हे भगवान तुम्हारे गुणों का वर्णन करना मेरे लिए असंभव कार्य। ये लिखा हमने बुझ। शास्त्र में थोड़ी बहुत निंदा आती है, वो तो भाव लिंग के बिना अकेला द्रव्यलिंग होता है उसकी आती है, खासकर द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की। लेकिन द्रव्यलिंगी कई तरह के होते हैं। देखो चौथे पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, पांचवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, छठवें सातवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, तेरहवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, हम इनमें तो गिनते ही नहीं थे। वो कहते दोनों होना चाहिए, ख्याल में आई ना। अब वो अकेला वो द्रव्यलिंग धारण कर लिया और भावलिंग नहीं है, उस द्रव्यलिंग की निंदा है। वो वास्तव में द्रव्यलिंग ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से आया ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती से थोप लिया है। अरे चौथे पांचवे वाले कैसे होते होंगे, कोई बात नहीं है। मुनिराज हैं, सत्य हैं, जब दीक्षा ली थी सीधे सातवें गुणस्थान में गए थे। अब बाद में कोई सफलता आ गई और छठवें आ जाते हैं, तो छठवें और सातवें में तो झूलते ही रहते हैं, लंबा झूला लग गया तो वो पांचवें में भी आ जाते हैं। अब पांचवें में आ गए, एक दो ने पता ही नहीं चलता। यदि पता भी चल जाए तो दौड़ के कपड़े पहनेंगे कि वे छठवें सातवें में जाने की कोशिश करेंगे। बोलो क्या करना चाहिए। तो पुरुषार्थ तो छठवें सातवें में जाने का करेंगे तो वो पहुंच जाएंगे बखदम। तो उतने काल तक वे पांचवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी रह गए, चौथे तक भी जा सकते हैं। ग्यारहवें गुणस्थान से गिर के पहले तक आ जाते हैं ना, मुनि एकादश गुणस्थान चरी गिरत तहाते चित्त भ्रम ठानी। आप बोलिए तो फटाफट दौड़ के उनकी ड्यूटी क्या है, बोलिए। ये है कि वो अपने गुणस्थान को आगे ऊपर बढ़ाने की कोशिश करें कि दौड़ के कपड़े अपने शरीर पर डालने। कहां से लाएंगे कपड़े, जब इतने दिनों से कपड़े लेते ही नहीं है, कोई देगा भी कैसे, संभव ही नहीं है ना। जिससे कपड़े मांगेंगे वो उपदेश देगा, कपड़े तो देगा नहीं, तो बनेगा ना मेरे कहने। तो इसलिए जो होते हैं सब, तो यहां तो द्रव्यलिंग भी है, भावलिंग दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन एक ऐसा है कि उसके बिना नहीं होगा लेकिन उससे नहीं होगा, और दूसरा है उसके बिना नहीं होगा और उससे होगा। इतना अंतर है कारण में, बस खत्म। इस अंतर को हमारे विवेक में समझना है कि किसी की निंदा प्रशंसा के लिए बात है ही नहीं है? बार बार कहते साहब हमें द्रव्यलिंगी मुनि मानते हैं, हम द्रव्यलिंगी नहीं मानते। कौन मानता है तुम्हें द्रव्यलिंगी, समझ में नहीं आता। वो तो 28 मूल गुणों से बिल्कुल निर्दोष पालन होता है उसके। टूर्नामेंट जी ने कितना साफ लिखा, ऐसा ना हो तो नौवें गरीब एक पर्यंत कैसे जाएं। यदि उसे बाहर की कोई स्थूल भूल रह जाए तो नौवें गरीब एक पर्यंत जा नहीं सकते हैं, है ना। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिन्हें आत्मकल्याण करना हो वे आत्मज्ञान की दिशा में सक्रिय हों। मात्र क्रिया कांड में उलझे रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मात्र लिखा ना, तो ये निषेध कहां आया। वो तो अकेले उसके वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैं दोहराता हूं कि जो ज्ञान के द्वारा जिनके काम होगा तो वो क्रियाकांड से उनका उनके क्रियाकांड से तो होगा कि नहीं, उनके से भी नहीं होगा। कि सहयोग तो मिलेगा कि सहयोग भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत। क्यों, कहीं से तो रखो थोड़ी जगह उनको, कि व्यवहार से रखना हो तुम्हें, कहने में अच्छा लगता है तो बहुत कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में होने वाला कुछ नहीं है। देखो तो मैं बहुत कठोर उदाहरण देता हूं, खत्म करता हूं। अपनी बेटी की शादी जिसके साथ हुई है اپنا جمائی تو بری ہے نا, کیوں؟ اب اس کا بھائی کیا میرے, وہ بندے کھنڈ میں چلتا ہے, مارواڑی تو بہت سمجھدار ہے, ایک ہے جمائی, باقی سب بیائی. بیائی مانے کچھ نہیں, ایسا سوئے کے پرسن میں بھی آیا تھا نا. اب یہ نہیں سمجھا ہمارے جمائی, تو کہنا ہو تو کہہ لو, لیکن واسطو میں 1-8% تو جمائی ہیں کہ نہیں, جمائی کے بھائی اپنے جمائی 1-8% تو ہیں, کیوں بولو؟ بالکل ہی نہیں ہے نا, بالکل زیرو ہے نا. یہ ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ سب کو یہ ماننا پڑے گا. یدی اس نے 1% مان کے 1% پتی جیسا ویوہار کیا تو اس کو جیل میں جانا پڑے گا, وہ گھر میں نہیں رہ سکتا ہے. کیوں؟ تمہیں کہنا بڑے پاپا چھوٹے پاپا, دو دو پاپا ہوتے ہیں, بڑے پتا جی چھوٹے پتا جی, بڑی ممی چھوٹی, یہ کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں, ہو ہی نہیں سکتے ہیں, سمجھ گئے نا. ایسا ہی اس میں رنچ ماتر بھی نہیں ہے, تو پھر کیسے کہنے ہیں؟ ایسا ہی ہے کہنے کا ویوہار, تو جگت میں ایسا ہی ہے چلتا ہے. تمہیں کہنا ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تو ہم تو بار بار اس لیے کہتے ہیں تو تم یہ کہنے کی وجہ سے اسے تھوڑا بہت مان نہیں لو. ان کے تو ہیں جن کے سچے ہیں, ان کے تو ہیں جو سچے منی راج ہیں, ان کے تو ہیں, ان کا تو یہ سب ہے کہ نہیں, کسی کا بھی نہیں ہے. ان کا سبھاو تو نہیں, ان کا سبھاو بھی بند کا کارن ہے. یہ بات ان میں کہی گئی ہے. کل جو اپن کلش پڑھیں گے بہت اچھا ہے, کلش بہت اچھا.